Vishram Vande Jagatvam Om Shanti Shanti Shanti. Upasthit Sri Atman, समय बड़ा सुंदर है, पवित्र स्थल है, अच्छे भूदेव हैं, ब्राह्मण हैं, आप सब हैं, सब परमात्मा की संतान हैं। हम और आप जब भारतीय संस्कृति का अध्ययन करें तो आज पूरा विश्व हमारी संस्कृति का आदर कर रहा है। मंदिर की बात है, कीर्तन है, पूजा है, पाठ है, सत्संग है, हम पवित्र स्थलों का दर्शन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, गुरु का सान्निध्य प्राप्त करके सेवा करते हैं। इसके पीछे एक जबरदस्त वैज्ञानिक विचार है कि हम आप जन्म से दो परिबल लेकर आए हैं। एक दिव्यता, जिसे वैज्ञानिकों ने कहा डिविनिटी, डिविनिटी, और दूसरा परिबल जो है पशुता। हमारे आपके अंदर पशुता भी है और दिव्यता भी है, एनिमल पैशन एंड डिविनिटी। जब हम अपनी गर्भ अवस्था की स्थिति को देखें तो हम पाएंगे के क्रम से शून्य से हम बढ़ते बढ़ते छठे माह में गर्भ में वानर के आकार में आते हैं, फिर सातवें माह में नर या नारी कट करके जो हुआ है वो हमारे स्वरूप को प्रकट करता है। हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन भी उठा के देखें तो आज पूरा विश्व, पूरे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक मान रहे हैं कि भारत की संस्कृति एक अच्छे इंसान को इंसान के रूप में प्रकट करने की साधना है। या विचार तो कीजिए, आप अगर जानते हैं तो आपको धन्यवाद है। हमारे ब्राह्मण हवन कर रहे हैं, आप ताजुब करेंगे, ये हवन से ही हेमन बना है अंग्रेजी में। जहां पर हवन होगा पर्यावरण शुद्ध होगा, जहाँ पर्यावरण शुद्ध होगा वहाँ सुनना देखना ये अच्छा होगा, जहाँ सुनना देखना अच्छा होगा वहीं संतानें पवित्र शुद्ध और वीर बनेंगे। इसलिए आप सबकी कृपा से पूरा भारतीय होते हुए भी भारतीय संस्कृति के प्रति नतमस्तक हों, लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिक भी। और आज पूरा विज्ञान हमारे साथ है, हमारा आदर कर रहा है, तो हमारी जो भी पद्धति है उस पर कभी शंका नहीं करना। जय शुद्ध लोहार बनन, ब्राह्मण ऐसा क्यों करता है, गुरु जी ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति का आधार ऋषियों का अनुभव है। और आज विज्ञान भी मान रहा है कि अनुभव कभी गलत नहीं होता, विज्ञान का आधार प्रयोग है, विज्ञान एक्सपेरिमेंट पर है, हमारे विचार एक्सपीरियंस पर है, अनुभव पर है। और आपका विज्ञान भी कह रहा है कि अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, गलत होगा तो प्रयोग ही होगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का जो अनुभव है, यहाँ जितने भी बैठे हैं, मैं हर संप्रदाय के प्रति नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ, हर व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ, हर मंदिर को, मस्जिद गुरुद्वारे को भी प्रणाम करता हूं। एक बार मैंने कह दिया तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप तो शुद्ध हिंदू हैं और आप सबको नमस्कार करते हैं। मैंने कहा मैं एक भारतीय संत हूं, अपनी संस्कृति का सेवक हूं, रक्षक हूं, और ये भारत ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है हर तरह से, लेकिन मैं वैज्ञानिक भी हूं। मैं क्यों सबका आदर करता हूं आपको बताओ। मेरे प्रिय आत्मन, यहां सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, माताएं भी पढ़ी लिखी हैं, पुरुष भी पढ़े लिखे हैं, बच्चों के लिए खास। मैं जाति पांति का गौरव अनुभव करूंगा, विरोध नहीं। हम एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। आपका चेहरा मेरा चेहरा नहीं मिलता, ये अंतर है, विरोध नहीं है। आपका एक लड़का डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तो एक दूसरे के पूरक हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग में कोई आपस में विरोध नहीं है, ये तो अज्ञान के कारण हो गया। इसलिए मैं सबको जो नमस्कार करता हूं उसका आधार विज्ञान है, आदर सत्ता करता हूं, गौरव प्राप्त करता हूं। मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन संभव है कुछ लोग अज्ञान के कारण हमारा विरोध करते हो। सूर्य पूर्ण है, वो प्रकाश देता है। जब आप दरवाजा खोलेंगे तो सूरज नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है, आपकी संप्रदाय क्या है, आप किसकी भक्ति करते हैं। वो तो कहता है दरवाजा खोलो, मैं अपने आप उतर आऊंगा। इसी तरह से आपके मकान की मैं इज्जत करूंगा, आपके मस्जिद गुरुद्वारे की इज्जत करूंगा, आदर करूंगा, सत्कार करूंगा। क्योंकि जब सूरज हिंदू ने दरवाजा खोला तो हिंदू के घर में प्रवेश किया, और मुस्लिम ने दरवाजा खोला तो सूरज मुसलमान नहीं हो जाता, वही रहता है। एक बड़ी जाति वाले ने दरवाजा खोला तो भी सूरज वही है, एक झोपड़ी वाला जब खोला तब भी वही है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दरवाजा खोलता है तो भी सूरज वही है, एक अनपढ़ व्यक्ति अपने द्वार को जब खोलता तो भी वही है। इसलिए मैं सबका आदर करता हूं, लेकिन पूरी तरह से पूजा मैं भारत की संस्कृति का करता हूं। मानता सबको हूं, मैं तो किसी काज का पढ़ा, बाइबल भी जानता हूं, हमारे प्रोफेसर मुस्लिम सर हैं तो कुरान भी जानता हूं। बाइबल का या क्रिश्चियंस जो है, कुरान का या जो मुस्लिम सर है, इनमें भी मैं अपने परमात्मा को देखता हूं, आदर करता हूं। लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसकी मैं पूजा करता हूं। पूजा क्यों करता हूं कि विज्ञान के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ अनुभव दिया है, विज्ञान वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एक वैज्ञानिक की जाति पाति नहीं पूछी जाती कि आप किस जाति के, वैज्ञानिक वैज्ञानिक है। आपके घर में आज प्रकट हुई कि कहीं भी आज प्रकट हुई, उसे जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने वेद का आधार जो अनुभव है, और हमारे संपर्क में अच्छे अच्छे विद्वान हैं, रिसर्च भी चल रही है, अभी नई रिसर्च में आया है कि राम को इस धरती पर आए हुए लगभग 10,000 वर्ष हुए हैं और कृष्ण को लगभग 5,500 वर्ष। वो सब अपने ढंग से कह रहे हैं, लेकिन राम है, कृष्ण है। कोई 1,00,000 वर्ष कहे, 2,00,000 वर्ष कहे, तो भी मैं विज्ञान से सिद्ध कर दूंगा, बात गलत नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिक मान रहे हैं वो भी मैं मान रहा हूं। लेकिन जो पहले आपको बताना चाहता हूं उसे आप अच्छी तरह समझ लें। कहीं भी हमारे ऋषि मुनियों का विरोध आज कोई वैज्ञानिक नहीं कर रहा, और वही आपको बताना चाहता हूं। आदर और गौरव को बनाए रखिए। लेकिन जो मैं समझा रहा हूं, आपसे विनंती कर रहा हूं, उसको आप समझिए। विज्ञान भी कहता है और हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा, हमारा आपका जन्म कहीं भी हुआ, लेकिन शरीर पंच महाभूत से बना है, हमारी संस्कृति के आधार पर, ऋषि मुनियों के अनुभव पर पंच महाभूत का नाम हमारे सामने प्रकट हुआ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और विज्ञान मानता है, विज्ञान पंच महाभूत नहीं बोलता, एनर्जी बोलता है। हमारे ऋषियों ने कहा पंच महाभूत है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। अब आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके वैज्ञानिक भी एनर्जी की परिभाषा क्या कर रहे हैं? द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म। आपके वैज्ञानिक भी कहते हैं जो एनर्जी है उसका रूपांतर आप करते हैं। एक कर्म के द्वारा हमारा भी रूपांतर होता है, ये मैं लूंगा आपको। लेकिन पहले बताना चाहता हूं कि आप सब परमात्मा के पुत्र और पुत्री हो, जा विचार करो। एक बार वैज्ञानिकों ने मुझसे पूछा तो संक्षेप में आपको बता दूं, और वैज्ञानिक मान गए कि मनीषा नंदा के बात ठीक है। आपके सामने पानी है, वैज्ञानिक आधार पर एनालिसिस करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। विज्ञान के फार्मूले पे जाएं तो यह तो है, दो भाग हाइड्रोजन, एक भाग ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन से पानी बनता है, ये विज्ञान मानता है। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन से पानी बना। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलन हुआ तो वैज्ञानिकों का वाटर पानी। अब यहां देख लीजिए, आप अपनी बात कीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलन वैज्ञानिक आधार पर पानी है, और वैज्ञानिकों के सामने कहा हमारे पिता, हमारी माँ, ये दोनों के मिलन से मेरा जन्म हुआ, अगर दोनों अलग अलग होते तो जन्म मेरा नहीं होता। जैसे मैं अपनी बात कर दूं प्यार से, मेरे पिता का नाम है, बड़ी पोस्ट से मिले थे के नाम ही बताता हूँ, कृष्ण प्रताप सिंह। माँ का नाम धर्मिष्ठा कुंवर बा, लेकिन मेरा नाम सेवेंद्र था। दोनों के मेल से जो मैं पैदा हुआ, दोनों की शक्ति से जो मैं पैदा हुआ, तो मेरा नाम जो है अलग अलग था, लेकिन है तो उन्हीं का अंत में, माता पिता का ही है। अगर मैं गृहस्थ में होता तो दो या तीन बच्चे होते, लेकिन संन्यास लेने के बाद तो लाखों बच्चे हैं जो संभाल रहा हूं। आपको चार नहीं संभाल पाते, मैं तो लाख संभाल रहा हूं। कहां बच्चों की कमी है? आपके पास चार कोठी है, मेरे पास तो चार लाख कोठियां। हर मेरे चेले की कोठी मेरी है, हर मेरे बेटे की कोठी मेरी है। जरा सोचिए तो सही। आपके दो लड़कियों की शादी की चिंता है, हमारी तो 2 लाख लड़कियां, कोई चिंता नहीं, सबकी शादी हो रही। एक बात कहना तो जहां समझाना चाहता हूं कि विज्ञान के आधार पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलन ये पानी है। अब इसी तरह चलिए, हमारे पिता कहां से आए, उनके पिता थे, उनके पिता थे, उनके पिता थे, उनके पिता थे, उनके पिता थे। हमारी माँ कहां से आई, उसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, और फिर दोनों के मेल से पैदा होते रहे। जाते जाते आप जाएंगे, ये पिता पहुंचेगा शिव और माँ पहुंचेगी शक्ति। तो जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलन से पानी बना, ऐसे शिव और शक्ति के मिलन को परमात्मा कहा गया, परमात्मा कहा गया। इसलिए हम आप परमात्मा की संतान है, हमारे माता पिता परमात्मा है, उनके भी माता पिता, उनके भी माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता। तो वैज्ञानिकों के सामने जब वे बात रखे कि वन द टू थिंग्स मेड द साइज परफॉर्म एंड दैट इज द डिफरेंट क्वालिटीज, वो मान गए। स्वामी जी आपने बहुत अच्छी बात समझाया। जब हम एनर्जी की बात करते हैं टू एक्सेप्ट, बट वन आई से, जब मैं एनर्जी की बात करता हूं, ऊर्जा की बात करता हूं, तो आप स्वीकार करते हो, और जब परमात्मा की बात करता हूं तो नहीं। लेकिन परमात्मा की एक विकट विराट ऊर्जा है, और आपकी ऊर्जा कौन पैदा है, वो टेल मी द साइंटिस्ट यू आर हियर सेटिंग हु हैज क्रिएटेड एनर्जी। आप लोग वैज्ञानिक मुझसे बताइए एनर्जी कहां से, वो है हमारे भगवान ने बहुत पहले कर दिया, ना से तो विदते भाव ना भाव, जो है कुछ भी हो जाए। तुम भी यही मानते हो, हम भी यही मानते, हम कहते हैं परमात्मा की कृपा से ऐसा होता है। भोजन कौन पचाता है, हम कहते हैं परमात्मा, तुम कहते हो नेचर। तो नेचर किसकी बनी हुई है, वैज्ञानिकों के पास ये शब्द है मैनिफेस्टेशन। दोज हु आर साइंटिस्ट दे मे अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू स्पीक टू यू। जो विज्ञान का दैर्ज्य वैज्ञानिकों के पास एक शब्द है मैनिफेस्टेशन, प्रकट होना। और उसका भी अर्थ यही है, जब हमारे ऋषियों ने कहा प्रभु प्रकट हुए तब नहीं माना, लेकिन आज कहते हैं कि नेचर प्रकट हुई, तो कहां से प्रकट हुई, किससे हुई, किसका गुण लेकर आई। मेरी बात का जवाब बड़े धीरे से वैज्ञानिक देते हैं, मनीषा नाराज बिल्कुल ठीक, जो चीज जहां से प्रकट होती उसका गुण लेकर आती है। तो अगर हम नेचर कहें तो नेचर क्या है, या विचार की सब में से परमात्मा का आधार लेकर के प्रकट हुए, या विचार करो। हमारे ऋषि मुनियों ने कथा के माध्यम से बताया कि पेड़ की पूजा करो। आज विज्ञान भी कहता पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, जो हमारे लिए उपयोगी है। हमने सूरज को भगवान माना, सूरज हमें दे रहा है, दे रहा है। वैज्ञानिक भी कहते सूरज नहीं होता, कितना प्रदूषण हो जाता है कि धरती पर हमारा आपका जीना मुश्किल हो जाता है। चंद्रमा की शीतलता से प्रभाव से ही वनस्पति में रस पैदा होता है जिसका उपयोग हम कर रहे हैं। बरसात में बिजली कड़कती है तभी जाकर के फसलें अच्छी होती हैं, ये विज्ञान की बात है। उसकी सारी व्यवस्था अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो नेचर बोलते हैं। वैज्ञानिकों से जब बातचीत हुई तो मैंने कहा देयर इज वन प्लेस वेयर यू फेल टू अंडरस्टैंड एंड टू से इट इज द पावर ऑफ नेचर। मैंने कहा प्यारे वैज्ञानिकों, जब तुम नहीं समझ पाते, असफल हो जाते हो, तो कहते हुए तो प्रकृति है, नेचर है, इट इज द फंक्शन ऑफ नेचर, तो जब आप नहीं समझ पाते तो आप कहते हुए तो नेचर है। और मैं जानता हूं मेरे इस नेचर को बनाने वाला जो है परमात्मा है, इसलिए परमात्मा गुण सब में है, क्योंकि विज्ञान भी कहता है जो जहां से आया है उसका गुण लेकर आया है, तो हम सब में परमात्मा देखते हैं, तो आप ये बताइए कि जो चीज जहाँ से आती है उसका गुण उसमें विद्यमान रहता है, तो हम उसमें परमात्मा देखते हैं, तो विज्ञान दृष्टि से बताइए जब आपको परमात्मा की अनुभूति होगी तो कण कण में सब में भगवान ही नजर आएंगे, दूसरा कुछ नहीं नजर आएगा। और नहीं समझ पाते भगवान को तो भगवान की बनाई हुई चीज को कहते हुए नेचर है नेचर, लेकिन तुमने नहीं बनाया है भगवान, किसी ने बनाया है, लेकिन जिसने बनाया है हम ब्राह्मण साधुओं ने उस बनाने वाले को समझा और उसका नाम परमात्मा दिया और क्रम से ब्रह्मा विष्णु महेश दिया और तुमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया।
वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात,
तुम भी नाम दे रहे हो नेचर के नाम से। हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो ताजुब करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय आत्मन, यहां जितने भी बैठे हुए हो सब परमात्मा के स्वरूप, हमारी जो पुत्रियां हैं वो शक्ति स्वरूप है। और किसी मेरी बेटी को बहुत क्रोध आता है तो समझ जाइए शक्ति में क्रोध करने वाले भी शक्तियां हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं। कहते हैं ना महाराज जी, आप तो सबको शक्ति मानते हो, तो मैंने कहा भाई हाँ, काली माँ चंडी माँ को देखा है तो होगी उसका स्वरूप। एक बात कर स्वामी जी, आपके चेले को बहुत क्रोध आता है, तो मैंने कहा मेरा चेला भोला है तो बाला है तो शंकर है, आएगा थोड़ा क्रोध, उसमें क्या फर्क पड़ा। एक बात करता, बाहर से व्यवहार से मापने कोशिश न करो, ये आपको कहता, वो सब एक व्यवस्था है। लेकिन अभी आपको बताना चाहता हूं, जितने पुरुष हैं ये सब शिव के स्वरूप, जितनी आप माताएं बेटियां बैठी हैं शक्ति के स्वरूप है। इसलिए सबसे पहले मानिए आप पवित्र हैं। बेटी की बात करूं तो उनके भी माता पिता थे, पुत्र की बात करूं उनके माता पिता थे, शिव शक्ति के रूप में आपका यह व्यवहार में एक बेटी एक बेटा है, लेकिन दोनों के मेल से आप पैदा हुए हैं, इसलिए दोनों की शक्ति आप में है। अब यही बात आई, हमारी बेटी में नारी शक्ति है, इसे पूर्ण बनने के लिए पुरुष की पूजा करनी पड़ेगी। अर्थात हमारी बेटियां राम की करें कृष्ण की करें शंकर की करें, पुरुष पूजा प्रदान है। और जो पुरुष हैं वो नारी की पूजा करें, इसे हम लोग अंबा जी की पूजा वैष्णो देवी की पूजा करते हैं। अब इसका विज्ञान बता दो, हमारा आपका जन्म माता पिता के मेल से हुआ, न केवल पिता से हुआ न केवल मां से। पुराना जो इतिहास है वो तो 12 साल का है, लेकिन अभी घट के पर्यावरण का 7 वर्ष का हो गया। तो पुराने आधार पर बता रहा हूं कि 12 साल तक हमारे पुत्र और पुत्री में दोनों हार्मोन्स इक्वल होते हैं। हमारे बेटे का 12 साल के बाद मेल हार्मोन्स डेवलप होता है, इसलिए उसे बहन की जरूरत पड़ती है, 4 साल बहन चाहिए। और 4 साल के बाद पैतृक व्यवस्था से फिर उसकी शादी करना पड़ता है जो कुछ है। अब देख लीजिए, हमारा बेटा पुराने आधार से जब 12 साल पूरा करके आगे चलेगा तो उसे नारी की मदद चाहिए जो पहले बहन के रूप में आती है। इसलिए हर भाई एक बहन से आता है, एक बहन भाई से आता है। 12 साल के बाद हमारी बेटी में फीमेल हार्मोन डेवलप होगा, इसलिए उसे भाई चाहिए। और 4 साल के बाद फिर शादी ब्याह की जो बात आती है, अट्रैक्शन, जो हम धर्म के नाम से विवाह की बात करते हैं। अब देख लीजिए आज वैज्ञानिक क्या करते हैं, हमारा पुत्र अगर देवी की उपासना करेगा, अंबा जी के करे वैष्णो देवी करे, जब देवी की उपासना करेगा तो फिर विज्ञान आ गया। हमारे आपके माइंड में 1,55,00,000 कैल्स हैं, जिसमें 90% पशुता है, और उस पशुता में से निकलने के लिए हमारे बेटे को नारी का ध्यान करना पड़ेगा, जो अंबा जी और वैष्णो देवी और नारियों के नाम में जो भी है, कोई आशापुरी की बात करता है, कोई उमिया की बात करता है, सब नाम है, लेकिन एक मूल प्रतीक रूप में नाम लेता हूं, किसी नारी की पूजा करनी पड़ेगी। तो जब हमारा बेटा नारी की पूजा करेगा तो विज्ञान आ गया, आई यू थिंक सो यू बिकम, हमारा बेटा नारी की आवाज सुनेगा, कथा सुनेगा, दर्शन करेगा, तो हमारे विचार में नारी के प्रति आदर सत्कार पूज्य भाव आएगा, इसलिए बहन को प्यार करेगा, नारी की पूजा करेगा। और फिर जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो अपनी पत्नी का भी आदर करेगा, धर्म का भी निभा करेगा, लेकिन मन में दूसरों के रूप को देख करके गलत विचार नहीं आएगा, ये समझिए। रावण विष्णु सब कुछ था लेकिन संस्कार नहीं था, बस इशारा कर, चार वेदों का ज्ञाता था लेकिन वैज्ञानिकों की बात करता हूं, हाथ जोड़ करके रावण का खंडन नहीं कर रहा हूं, ऐसे लोग हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि रावण अगर देवी की उपासना करता तो शायद इतना गलत नहीं होता, ये वैज्ञानिकों की बात है, वो पुरुष की, पुरुष होकर पुरुष की करता रहा, जा विचार कीजिए। हमारे ऋषि मुनियों में भी नाम नहीं लेता, लेकिन बड़ी शक्तियां प्राप्त करने के बाद जब हमने देवी की पूजा की तभी जाकर के सिद्धियां टिकी, नहीं तो सिद्धियां भी नहीं टिके, चाहे कोई भी हो। तो एक बात अब विज्ञान स्वीकार कर रहा, और हमारी बेटी पूजा पुरुष की करे, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, इस 4 साल तक जो हमारी बेटी पूजा करेगी, धर्म से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगी, तो पति कलामा और किसी पर गलत विचार जाने वाला नहीं है, आज विज्ञान मान गया। लेकिन अब एक घट के 7 साल हो गया टीवी के कारण, इसके कारण, क्योंकि मेरे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मेरे संपर्क में हैं, वो भी कहते हैं स्वामी जी आपके बात ठीक है, अब 7-8 साल 9 साल के बच्चों को हरकतें देखी जा रही है, जो कहना मुश्किल, इसलिए मैं नारी पर बहुत ध्यान देता हूं। जब अभिमन्यु की बात आई तो आज विज्ञान मानता है, गर्भ में ही उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आ गया था, मां सो गई तो आगे का प्रकरण भी बंद हो गया, इसलिए आज पूरा विज्ञान मानता है कि भारत में नारी का इतना सत्कार पूजा क्यों है, क्योंकि नारी के विचार से, सुनने देखने से, हलन चलन से ही, गर्भ से ही बच्चों का संस्कार बनना शुरू हो जाता, इसलिए नारी के प्रति आज पूरा विश्व हमारा समर्थन कर रहा है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, अर्थात जिस घर में समाज में नारी का सम्मान होगा वहां अच्छे लोग पैदा होंगे, और जिस घर में समाज में नारी का सम्मान नहीं होगा वहां राक्षस पैदा होंगे, ये आपका विज्ञान कह रहा है। अब इसलिए सबसे पहले आपसे कहता हूं, आप स्वतंत्र हो, आपका निर्णय आपके हाथ में है, ईश्वर ने आप इतना सुंदर हाथ दिया, लेकिन आप प्रणाम भी कर सकते हो, गला भी दबा सकते हो, ये स्वतंत्रता केवल हमें आपको मिली, पशु को नहीं मिली, पशु अपना जीवन जी लेगा। अब हमारी स्वतंत्रता का संबंध विज्ञान भी कहता है, संस्कार से, माता पिता परिवार ने क्या संस्कार दिया उसी से, और पहला संस्कार जो सनातन धर्म का है उसका क्या प्रेम का। पूरे विश्व में किसी परिवार में बेटा बेटी पैदा हो लेकिन भगवान की कृपा से जन्म के बाद हर बेटा हर बेटी चाहे दुनिया में कहीं भी जन्म लिया हो सत्य और प्रेम के प्रति आकर्षण है। ये झूठ बोलना तो सिखाया जाता है, घृणा तो सिखाई जाती है। जो सिखाई हुई चीज है ये हमारी अपनी प्रगति नहीं है, ये लादी हुई प्रगति है। ये क्रोध आपका स्वभाव नहीं है, एक घृणा आपका स्वभाव नहीं है, आपका स्वभाव सत्य है, प्रेम है। मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूं, मेरे पास आते हैं नमस्कार करते हैं, आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, इसे इथोस बोला गया, विधि बोली गई। लेकिन आधे घंटे तक आप साष्टांग प्रणाम करते रहे तो आप भी परेशान, गुरु भी परेशान। आपके सिर पर हाथ रखता हूं, आशीर्वाद देता हूं, आप आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। हमारी अपनी भारतीय संस्कृति की पद्धति है, व्यवस्था है। लेकिन 15 मिनट तक मैं अपना हाथ आपके सिर पर रखूं नहीं छोड़ू तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए सब करना है, क्यों करना है बताऊंगा। लेकिन सत्य और प्रेम में आप लंबे समय तक रह सकते हैं, घृणा क्रोध में नहीं। तो जो लंबे समय तक जिस विचार में आप नहीं रह सकते वो मिथ्या है। लेकिन इस मिथ्या के आधार पर ही हमें सच का बोध होगा। आपके सिर पर हाथ रखा है, आपका शरीर मिथ्या, मेरा शरीर भी मिथ्या, लेकिन इस मिथ्या से जो आशीर्वाद मिलेगा उस आशीर्वाद से आपको शक्ति मिलेगी, मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, और मन पवित्र शुद्ध होकर के आप परमात्मा में जाकर के ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे कि दुनिया में विकट से विकट परिस्थिति आने पर भी आप हार नहीं स्वीकार करेंगे, सिर पर हाथ रख के नहीं बैठेंगे। इसलिए गुरु का आशीर्वाद देना पड़ता है और शिष्य को इसके लायक बनना पड़ता है। तो मिथ्या सब मिथ्या, इसलिए विज्ञान मानता है कि भारत की जो पद्धति है, मैं स्वयं ब्राह्मणों को बहुत मानता हूं। कितने लोगों ने मुझसे कहा बुरा न मानिए, ब्राह्मण इतने जबरदस्त शक्ति वाले हैं, त्यागी है, अगर मेरा ब्राह्मण पैसा कमाना चाहे तो बुरा न मानिए, वो कपड़ा बेच सकता है, बटाटा बेच के कमा सकता, लेकिन वो समाज से समर्पित है। और आपको बता दूं, विज्ञान भी कहता है जिन देशों में नाम भले मौलवी हो, प्रिस्ट हो या ब्राह्मण हो, हमारे यहां ब्राह्मण है, किसी के यहां मौलवी है, किसी के यहां पादरी प्रिस्ट है, वो कहते हैं भारत के ब्राह्मणों को अगर भारत से अलग कर दोगे तो याद रखो जैसे आम के बगीचे के लिए रखवाली करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, सिंचन करना पड़ता है, तब आम का बगीचा तैयार होता है। लेकिन कांटे के बगीचे के लिए कोई तैयारी नहीं करनी है, कोई रखवाला नहीं रखना है। भारत वालों, अगर अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हो तो ब्राह्मणों की भी पूजा करो, मंदिर में जाओ, हमारे पुत्र देवी की पूजा करें, आदर सत्कार करें, हमारी बेटियां रामकृष्ण पुरुष की पूजा करें, आदर सत्कार करें। अगर ये पूजा पद्धति हट गई तो जैसे जंगल में बिना पानी दिए बिना खातर दिए कांटे का झाड़ पैदा होता है, इसी तरह से अगर ये सब हट जाएगा तो राक्षस ही पैदा होंगे, कोई अच्छा आदमी पैदा होने वाला नहीं। ये विधि है, ये विज्ञान भी मान रहा। आज हनुमान जयंती है, मैं सबका आदर करता हूं, सबकी पद्धति। आज आया, कितने प्यार से आप लोगों ने स्वागत किया, सत्कार किया, सुरेश जी के आ गया, धनसुख भाई के आ गया, सब अच्छे अच्छे लोग मिले, हमारे साथ भी आए हैं, यहाँ क्यों आए? बुरा न मानिएगा, हमारे जो नजदीक वाले हैं प्यार से कर, स्वामी जी बड़ी धूप है फलाना, ये आपको बताऊं, मैं चाहता हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं सापेक्ष बात जानता हूँ, और उसका एक उदाहरण दे दू, किसी से मैं कहूं कि धूप में खड़े रहो, ये सापेक्ष बात है, वैज्ञानिक हूं इसलिए कर रहा हूं, और जो विज्ञान पढ़े मेरी बात का समर्थन करेंगे, किसी से कह दूं कि धूप में खड़े रहो, महाराज जी बहुत धूप है नहीं खड़ा हो सकता, मैं प्यार से कर रहा हूं, प्यार से, गलत ना समझना, कह दूं कि एक घंटे का 1000 रुपया दूंगा, अरे महाराज जी जाता हूं 2 घंटे खड़ा रहूं, ये धूप हो कि पत्थर हो कि बर्फ गिरे, लेकिन आपके प्रति इतना प्यार है, जैसे लोगों का प्यार पैसे के लिए है और पैसा कमाने में धूप सहन करते हैं, ऐसे धूप पड़े कि पत्थर गिरे, लेकिन आपके लिए बच्चों के लिए भाव है, जब भी बुलाओगे मैं आपके साथ हूँ, कोई धूप कोई पहाड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये है सापेक्षवाद, इसलिए मैं सापेक्षवादी हूँ, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कोई तकलीफ, क्या तकलीफ होगी पैसा कमाने के लिए, तो कोई तकलीफ नहीं, तो आपसे मिलने में क्या तकलीफ होगी, या विचार के आप मेरी बेटी है, सूरत स्टेशन पर छोड़ने गया, 3 घंटे ट्रेन लेट हो गई, बहुत आनंद आया, चलो बेटी 3 घंटे, लेकिन पड़ोस को छोड़ने जाऊंगा तो 15 मिनट का, हे भगवान हे अल्लाह आगे ही उसको लेट होना, जहाँ प्यार है वहाँ लंबा समय छोटा लगता है, और जहाँ प्यार नहीं है छोटा समय भी, मैं आप लोगों की बात बता दूं, मैं आपका गुरु हूँ, गुरु पहले माँ हूँ, पिता हूँ और फिर गुरु, तो बता दूं, बताऊं कि नहीं बताऊं, चलो मैं अपनी माँ पे लेता हूँ, मेरी माँ के मनपसंद जब रिश्तेदार आते थे तो रात के 12 बजे भी नौकर जगा करके बना के खिलाते थे, और मनपसंद नहीं आता था नौकरों से कहलाती थे सुबह मिलेगा बेटा तो सोचा, जब इतनी बड़ी मेरी माँ की हालत है तो आप लोगों की हालत है कि सुबह मिलेगा अभी नहीं मिलेगा, आपकी भी बात है, मेरी प्यारी बेटी मैं आपका गुरु, आपका भाई आ जाए तो रात के 12 बजे भी खिलाती हो, और पति का भाई आ जाए तो नींद आ जाती, हाथ जोड़ देगा एक बात करता, इसलिए जब प्यार होगा, इसलिए सुरेश जी धनसुख भाई हमारे जो और फ्री बैठे हैं, जब भी बुलाओ तो मैं आऊंगा, मुझे कोई धूप कोई पहाड़ कोई बर्फ कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं, क्या करेगा। अब आई हनुमान जयंती की बात, आप लोग आए कितना आनंद आया, पहले सुरेश जी के यहाँ गया, सब आए, बाहर से भी हमारे साथ मेहमान आए हैं, हमारे साथ भी आए, धनसुख भाई के यहाँ गया, आपने इतना स्वागत में लाए लाए, अब देखिए मैं बता, आपने मनीषा धन को ऊंचे बैठाया, ये मनोवैज्ञानिक बात कर रहा, आपने ऊंचे बैठाया, गीत संगीत के माध्यम से आप लाए, आप भजन गा रहे थे, क्या एक बार एक विदेशी ने पूछा कि स्वामी जी आप लोग इतने ऊंचे बैठते हो, अभी भी ऊंचे बैठा हो, तो आप लोग अहंकारी नहीं हो? मैंने कहा ठीक है, आप ये बताइए आपके घर में टाटी है पानी की कहाँ है, तो नल नीचे है कि ऊपर है, कहे स्वामी जी बता के न बोलिए, तो हम तो भगवान की टाटी है, मेरे में से लेना है तो नल बनो नीचे, और आपको देना है तो आप आ जाओ, मैं नीचे बैठता, कहे स्वामी जी माफ कीजिए, ये भगवान की टाटी है, पानी चाहते हो कुछ चाहते हो तो नीचे बैठो, नहीं तो नल ऊपर होगा, स्वामी जी कहते हमारी पद्धति बहुत अच्छी है, जब आप प्रणाम करते ये करते वही पद्धति है सब, इसलिए माता पिता गुरु को प्रणाम ब्राह्मण आदर करो, तो आज ये हनुमान जयंती है, हनुमान जी के विषय में जो वैज्ञानिक विचार है वो आपको दूंगा, प्रतीक में हनुमान जी है, आज हनुमान जयंती, लेकिन किसी की भी पूजा करो, लेकिन जो बताना चाहता हूं उसे स्वीकार करो, सबसे पहले आप किसी धर्म का, किसी संप्रदाय के, किसी की पूजा का खंडन न करो, क्योंकि आपका परमात्मा सब में, आप अपना खंडन कर रहे हैं, किसी दूसरे खंडन नहीं कर रहे हैं। अब आ जाइए हनुमान जी पर, किसी की भी पूजा करो, लेकिन हनुमान जी का आधार पर जो विचार दे रहा हूं उस विचार को स्वीकार करो। वैज्ञानिक कहते हैं हनुमान जी में इतनी शक्ति क्यों आई, स्मरण और सेवा करो। आप उदाहरण ले लीजिए, एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि राम कहते हैं सीता का पता लगाओ, वैज्ञानिक कहते हैं अब इन सब बातों मत जाओ, लेकिन इसकी विधि को, प्रोसेस को समझो। पहले तो बहुत वैज्ञानिक इधर उधर बोलते थे, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है, विधि है, उसको समझो। हनुमान जी सीता की खोज में चले, राम काज कीने बिन मोई कहां विश्राम। प्रभु ने जो आज्ञा दी है, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता मैं विश्राम नहीं करूंगा। राम को याद करते रहे और सीता की खोज में चलते रहे। मनोवैज्ञानिक विचार, राक्षस आए, राक्षसनी आई, अनुकूलता आई, प्रतिकूलता आई। आप देखिए सीता तक पहुंचने में कितनी कठिनाई हुई। अब व्यवहार में ले लो, आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, अच्छे संत बनना चाहते हैं। राम का मतलब जिसे आप मानते हैं, कैसी भी परिस्थिति से उसका स्मरण का त्याग मत करो। और आप जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अवरोध भी आएगा, विरोध भी आएगा, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बरसात भी आएगी, ठंडी भी आएगी, लेकिन इसमें से निकलने का प्रयास करो। मनोवैज्ञानिक ढंग पर एक बात लीजिए कि हनुमान जी में इतनी ताकत क्यों आई। जब राम ने कहा कि सीता की खोज कर बड़े खुश हो गए, उत्साह आया, प्रसन्नता आई, और राज विज्ञान कहता है आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, अच्छे महात्मा, आर्किटेक्ट, कुछ भी, अंग्रेजी माता है, वेल बिगिन हाफ कर। आज मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं हनुमान जी से कुछ लोगों ने कहा भी, ये बड़ा कठिन काम है, परिस्थिति बड़ी बिकट है, लेकिन हनुमान जी का उत्साह देखे। प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो निभाने की शक्ति भी दी है, इसलिए मेरे अंदर किसी तरह से कमजोरी नहीं है। अब इसको आपको बताता हूं, आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप इसके लायक हैं, आप खुश हो जाओ। हनुमान जी प्रसन्न हुए कि मुझे प्रभु ने लायक समझा, इसलिए जिम्मेदारी दी। आप कलेक्टर बने, भगवान ने लायक समझा, व्यवस्था सरकार किया, भगवान की निगाह में आप लायक थे, इसलिए कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, मंत्री बने, महाबलेश्वर बने, वो लायक। आज यहां पर भी जो आप हैं, हमारी बेटी है कि बेटा है, नर है कि नारी है, मैं वैज्ञानिक दृष्टि से कहता हूं आप लायक हैं, इसलिए आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, आप 50 लाख की कोठी बनाई है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, आते लोग मेरे पास, महाराज ये बच्चे को मेडिकल में भेजना है, मैंने कहा तुम विचार अच्छा रखो, मदद करेगा, ईश्वर करेगा, और होती है मदद, मैं आपसे कह रहा हूं। चाहे शादी की बात है, लड़का लड़की की, मेडिकल इंजीनियरिंग की बात है, क्या कहें, मैं अपने गुरु मनीषा ने बात याद रखो, जो परमात्मा ये पूरे जगत को चला रहा है वही तुम्हारे अंदर है, लेकिन परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए हर काम सुबह से शाम तक आनंद से करो, परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा या तो किसी को निमित्त बनाकर भेजेगा, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। विकट से विकट परिस्थिति आई हनुमान जी के सामने, लेकिन स्मरण में राम कभी निराश नहीं हुए, कभी हताश नहीं हुए। अब इसमें आपका गुरु भी आएगा, राम भी आएगा, कृष्ण भी आएंगे, हनुमान भी आएंगे, अल्लाह भी आएगा, महावीर भी आएंगे, भगवान बुद्ध भी आएंगे, पिता भी आएगा, माँ भी आएगा। मैं बच्चों से कहता हूं तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा पिता मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो पिता क्या करेगा? आपका पिता आपको मार्क्स देगा, कॉलेज देगा, मास्टर देगा, लेकिन पढ़ना तो आपको है ना, आपका जो काम है उसे करो। या विचार कीजिए, ये धरती का पिता भी जब हम लायक बनते हैं तो कैसे भी प्रबंध करके आगे बढ़ाता है, लेकिन निष्फल हो गए तो इसलिए नकारात्मक बात, निष्फलता के बाद जिंदगी में कभी मतलब इसे कुचल दो। और वैज्ञानिक तो कहते हैं मेरे प्यारे परिवार वालों, वैज्ञानिक कहते हैं कि जैसे जूते से तुम कांटे को खत्म कर देते हो, कांटा चुभने की कोशिश करता है लेकिन तुम्हारा मजबूत जूता उसे कुचल देता है, इसलिए तुम्हारी हताशा निराशा तुम्हें कमजोर बनाती है। गुरु के विचारों से कुचल दो, जैसे जूते से कांटा कुचलते हो ऐसे गुरु के विचारों से एक जो कमजोरियां कुचल करके फेंक दो। तुम्हारा गुरु नहीं कमजोर, तुम्हारा राम नहीं कमजोर, तुम कैसे कमजोर हो गए, तुम्हारा बाप नहीं कमजोर। आज विज्ञान कहता है एज यू थिंक सो बिकम, if you think that you are strong you become strong and the moment you think that you are weak you become weak, ye vigyan bhi kar raha hai hamare dusri muniyon to pehle hi kaha. Jab main kehta hu panch mahabhoot ki baat karta hu, aap kahin paida hue kisi jagah mahavir ko mante ho ki khud ko ki mere ko kisko, lekin main aap ki baat kar raha hu, aakash mein kitni taqat panch mahabhoot ki baat, वायु में कितनी ताकत, अग्नि में कितनी ताकत, जल में कितनी ताकत, पांच पांच ताकतों लेकर एक पिंड बना है, आकाश कितना विशाल है जो आपके अंदर है, वायु में कितनी ताकत है कि पवन चले सब झाड़ वगैरह उठा के फेंक देता है, आप अंदर पवन है वायु है, अग्नि में कितनी ताकत, एक चिंगारी भोजन भी बन सकता है, कोठी भी जल सकती है, कितनी चिंगारी कितनी अग्नि आप में, पानी देखिए धरती देखिए, तो आप बताइए जिस आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बने हैं इनमें इतनी ताकत है तो इससे मिलाकर के जो चीज बनेगी वो कमजोर कैसे हो जाए, कमजोर कैसे हो जाए। लेकिन हाँ विज्ञान कहता है तुम्हें सोचने की स्वतंत्रता है, सुनने से मन अगर मजबूत हुआ तो वही एक हनुमान जी के बात याद दिला दो। आज विज्ञान कह रहा समुद्र के किनारे आकर के सोच रहे हैं कि मैं कैसे पार करूं, बाल समय रवि भक्त लियो तब तेन लोक भय वाले आ रहे, हे हनुमान जी क्या सोच रहे हो, तुम जब बाल स्वरूप में थे सूरज को फल समझ कर अपने मुंह में डाल दिया तो क्या ये समुद्र सूरज से बड़ा है, उनको याद आया। अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं आप में शक्ति है, लेकिन आप भूल गए। जैसे हनुमान जी भूल गए थे, लेकिन जब याद दिलाया गया, हाँ, इसलिए हमारे ब्राह्मण, हमारे साधु, हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे माता पिता, हमारा मंदिर, इसकी व्यवस्था यही है कि यहां आने पर हम आपको याद दिलाते हैं कि आप लोग कमजोर नहीं हैं, कमजोर केवल मान बैठे हो कि कमजोर हो। कमजोर अगर कमजोर होते और आपकी प्रगति होती तो मैं आपको बलवान नहीं बना सकता। आप बलवान होते हुए अपने को कमजोर मान लिए हो, शेर होते हुए अपने को गीदड़ मान लियो। गीदड़ को मैं शेर नहीं बना सकता, लेकिन शेर जब गीदड़ बनेगा तो उसे हुकार देकर के शेर बना सकता। तो आप सब शेर हैं, लेकिन पता नहीं किस पर्यावरण में आकर के अपने को कमजोर मानते। अगर आप कागले होते तो मैं आपको नहीं सुधार सकता, लेकिन आप हंस हैं, पता नहीं किन कागलों के बीच में बैठकर आप अपने को कागला मानने लगे, वो गड़बड़ी हो गई। कागले तुम्हें हंस नहीं बना सकता, लेकिन हंस कागलों के बीच में उसे निकाल करके फिर उसे पहचान करा सकता हूं। तो कागलों के बीच में भी हंस था, लेकिन सुनते सुनते तू भी कांव कांव करने लगा। अब इसलिए मोती चुन, ये जो उल्टियां खाते हैं उसे खाने की जरूरत नहीं है, कागला जो गंदी चीज खाता है यही। तो ये जो हनुमान जी को याद दिलाया गया कि बाल समय रवि भक्त ले वो सब तीनों लोग दिया, तब उनको अपनी शक्ति का पता चला। तो कथा वार्ता थी, आज विज्ञान मानता है भारत में सत्संग कितनी महिमा क्यों है। सत्संग की कथा कि हमने करो से प्रकार भारत में मंदिर का इतना निर्माण क्यों है। आज विदेशों में भी हमारे संतों ने बड़े बड़े मंदिर बनाए, अब उनको पता चला कि मंदिर जो संस्कार देता है सुनने और देखने से। आज विदेशों में भी ब्राह्मण और साधुओं की पूजा हो रही है, ये संस्कार देते हैं, विचार देते हैं, समाज को करते हैं। इसलिए आज इस हनुमान जयंती पर हनुमान जी का आधार पर आपसे कहता हूं, आप सब में परम ताकत है, लेकिन भूल गए और आपको याद दिला रहा हूं। याद दिलाते समय कृष्ण की एक बात कहूंगा, मिट्टी खाने पर मां जसोदा क्या खाया क्या खाया कहती है, मुंह दिखा मुंह दिखा। पहले वैज्ञानिक नहीं मानते थे, लेकिन कहते नहीं नहीं, अपने उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाया। तो आज मैं आपसे कहता हूं, विज्ञान के आधार पर ये जो पंच महाभूत में पुत्र पुत्री के रूप में, नारी के रूप में, डॉक्टर प्रोफेसर सरपंच मंत्री के रूप में, महात्मा के रूप में, चाचा चाची जो भी बैठे हैं, सबके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। आप ये गेहूं देखते हैं बीज रूप में, लेकिन समय पर समर्पित करते हैं तो गेहूं बन जाता है, एक गेहूं अनेक। हमारा जो मंत्र है ओम पूर्ण मदा पूर्ण दम पूर्णा पूर्ण मदे, हम ब्राह्मण साधु जब कहते हैं तो पहले नहीं मानते थे, एक गेहूं में से कितने गेहूं पैदा, एक चने में से कितना, एक गुठली में से पेड़ बनते बनते कितनी गुठलियां, और हर गुठली पूर्ण है। इसलिए याद रखो मेरे पुत्र पुत्रियों, हम सब से उस शक्ति में से आए हैं, लेकिन एक विधि बता रहा हूं। तो जैसे गेहूं गेहूं में आ जाता है, जैसे चना चना हो जाता है, जैसे गुठली फिर गुठली में आ जाती है, इसलिए परमात्मा से निकले हुए आप सब परमात्मा रूप हैं, लेकिन मेरी बात मानोगे तो परमात्मा स्वयं एक एक यहाँ जो बैठे हैं सभी से उस शक्ति के रूप में अपनी अनुभूति करेंगे। ये मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। विज्ञान का था गुठली गुठली बनेगी, गेहूं गेहूं ही होगा, चना चना ही होगा, जो जहां से आया है एक विधि है वही होगा। तो गुठली कैसे? समर्पण, स्थिरता और प्रबल, ये विज्ञान है। गुठली को समय पर समर्पित करना पड़ेगा, फिर प्लांटेशन करना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें स्थिरता आएगी। आज यहां कल वहां, परसों वहां, कुछ नहीं। इसलिए परमात्मा के लाखों नाम है, उसे एक आकार को आदर सबका करो, सभी को नतमस्तक प्रणाम करो, लेकिन तकलीफ आने पर जो आपका ईष्ट है, चाहे राम है कि कृष्ण है कि हनुमान है कि अल्लाह है कि बुद्ध है कि महावीर है कि मनीषा है, सभी संतों का आदर करो, लेकिन जब तकलीफ आए तो अपने गुरु को याद करो, बस उसके अलावा दूसरे को नहीं। आप हनुमान जी मानते हैं बस वही, यहां विचार करो, इतनी शक्ति आप में है लेकिन स्थिरता नहीं आ रही, कभी यहां कभी वहां कभी। कितने लोग मुझे कहते हैं महाराज जी मुरारी बापू की कथा मैंने 20 बार सुना, मैंने कहा 20 बार सुना लेकिन बड़े भाई छोटे भाई का अभी तक तो मिलन ही नहीं देखा, जबकि भरत और राम के मिलन में रोते हो और अपने भाई से मिलने के लिए क्यों नहीं रोते? कथाएं तो सुन रहे हो लेकिन उसका निष्कर्ष क्या, उसका फल क्या है? जा विचार करो। एक ऐसी परिस्थिति आई, जा विचार करो, विश्वास करो, ये हनुमान जी से ही रिलेटेड है। ये समर्पण की जो बात कर रहा हूं, एक दिन मां सीता का दर्शन करने हनुमान जी आए, मां सिंदूर लगा रही थी, कहते मां ये क्या है, ये लगाने से क्या होता है? कहते भगवान प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी सोचने लगे कि इतना सिंदूर लगाने से जो प्रभु प्रसन्न होते हैं तो दूसरे दिन पूरा सिंदूर लगा करके चले गए। दरबार में पहुंचे, ये भाव समर्पण, पहुंचे राम कहते क्या है, कहा पहले बताइए आप प्रसन्न है कि नहीं? कहा हूं, कल मैं माँ के दर्शन किए गया तो माँ से दूर लगा रही थी, माँ कहती है भगवान प्रसन्न होते हैं, तो मैंने कहा इतने से दूर से आप प्रसन्न होते हो तो मैं पूरे शरीर में लगा दिया। कहा मेरी प्रसन्नता के लिए? कहे हाँ, तू ब्रह्मचारी है, तेरे हाथ में सिंदूर नहीं आएगा क्योंकि शादी तो करेगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए तूने ये किया है तो जा, जब तेरी पूजा होगी तो तेरे उससे दूर सही होगी। भाव समर्पण या विचार कर, इसलिए समर्पण क्या पूरा, आप जिसे भी मानते हैं हनुमान जी पूर्ण समर्पित है। अगर पूर्ण समर्पित नहीं होते तो पूछ में आग लगाई जाती है, पूछ नाम है इज्जत, मनोवैज्ञानिक, पूछ में आग लगाई गई लेकिन चुप रहे, क्यों चुप रहे मनोवैज्ञानिक विचार देता हूं। आज हर तरह से रसिया के वैज्ञानिक भी रामायण महाभारत का अध्ययन कर रहे और हमें बता रहे, एक तो पहले विश्वास की बात बताऊं, जा विचार कीजिए, त्रिष्ठा नाम की राक्षसी कहती है 30 दिन का समय है, अगर लंकेश की बात को स्वीकार करेगी तो पटरानी बनेगी, नहीं तो नौकरानी बनेगी, रोज याद दिलाती इतना दिन इतना दिन इतना, फिर कहती आज एक दिन रह गया, निर्णय ले ले सीता, पटरानी बन जाएगी। ये समर्पण का विश्वास, राम के प्रति समर्पित है, अभी एक दिन तो है, शाम हुई, जंगल जंगल भटकने वाला, जिसकी माँ ने निकाला वो तेरे को कैसे बताएगा। अभी भी समय है, मैं भवन में समाचार दूं, पालकी आएगी सोने चांदी की और पटरानी बन जाएगी। वहां पर सीता ने क्या कहा, मेरे प्रभु राम की कोई गलती नहीं है, पहले उनकी बात नहीं मानी और मर्यादा के बाहर लक्ष्मण रेखा के बाहर गई। अरे तिरसा, अगर मैं मर्यादा में लक्ष्मण की बनाई हुई रेखा जो मर्यादा है, मैं यही पुल से याद देते मर्यादा, इस समाज की देश के नियम की बनाई हुई मर्यादा। आज मनोवैज्ञानिक कहते हैं सीता के आधार पर, सीता कहती अगर लक्ष्मण रेखा के अंदर अगर मैं मर्यादा में रहती तो तेरा रावण छू भी नहीं सकता था, गलती मेरी है। लेकिन मैं इतनी समर्पित हूँ, इतनी तकलीफ में, उनके सिवा मेरे ध्यान में कोई नहीं आया, इसलिए वो हमारी रक्षा करे। समर्पण। अरे रात तो हो गई, कब आएगा, कभी रात तो बीतने दे, कल सुबह के बाद। और उसी रात 12 बजे हनुमान जी आ गए लंका जलाए। कितना विश्वास समर्पण का। अभी रात तो बाकी है, इसलिए जिसके पर समर्पित रहोगे, मैंने जीवन में देखा है, शायद 2 दिन में नहीं 4 दिन में, लेकिन आपके विनाश के पहले कोई रावण जैसा भी कुछ सोचेगा कि मैं इसका विनाश करूंगा, लेकिन मुझे अनुभव है वो जो विनाश करने वाला है, इसके पहले कोई कदम उठाए उसके पहले परमात्मा आपकी रक्षा कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। लेकिन समर्पण नहीं, घबरा मत जाओ, सीता घबरा रही है, इतने दिन कहा छोड़ो। चाहे आपके मैं कितने जानता हूं, एक किस्सा को बता दो, लड़की की शादी है, किसी रिश्तेदार ने कहा मैं तुम्हें मदद करूंगा, आप ताजुब करोगे कि 4 दिन पहले पता देके उसने ना बोल दिया, मेरे पास आए, कहे स्वामी जी सब उधार लाया हूं, ये है 4 दिन बाकी है, सब तो गोती छप गई, फिर अब वो ना बोलता। मैंने कहा मैं उसका गुरु, मैंने कहा तो अपने गुरु पर विश्वास कर, किसी से कुछ मत कर, एक दिन पहले सब हो जाएगा, अभी 3 दिन तो आए। तो उसका साथ का पड़ा हुआ कोई व्यक्ति आया, उसे मालूम भी नहीं था किसी लड़के के साथ एक दिन पहले आया, तो बड़े दुख में गया। मैंने कहा कहना बिल्कुल नहीं, गुरु भी समझ रहा है भगवान से, कहने क्या जरूरत है, कहे बात क्या है, तुम्हारी लड़की की शादी है, सब कुछ है, लेकिन ये सब क्या है। कहा नहीं कोई बात नहीं, कहा गुरु जी ने कहा कुछ मत करना किसी से, कौन मन, अरे तो मनीषा मन तो मेरे भी गुरु, मैं जाके पूछाऊंगा कि क्या बात है। उन्होंने फोन लगाया मुझे, कहा स्वामी जी आपने से मना किया क्यों, मैंने कहा आप ही परमात्मा बन के आए हैं, वो बोलेगा आप मदद करो, पूरी मदद एक दिन पहले हो गई, काम बन गए। कितने लोगों ने अनुभव किया है भाई, कितने लोगों ने किया है, लेकिन यही घबराइए नहीं, इस सीता की बड़ी जबरदस्त बात है, अभी रात तो बाकी है। अब जा देखिए मनोवैज्ञानिक बात, माँ भूख लगी है, बेटा जाकर खा लो, नुकसान ना करना, ये बगीचा अपना नहीं है, लेकिन भूख लगे तो खा लो। अभी एक फल तोड़े थे, खाई गए थे, राक्षस ने किया, फिर ब्रह्मास्त्र चला, फिर पकड़े गए, सब कुछ हुआ। अब यहाँ एक बात बताता हूँ, मनोवैज्ञानिक कैसे जवाब दे रहे हैं समझ लिया, कहते इसलिए पूरी रामायण पढ़ने के बाद पूरा महाभारत भी पढ़ो, रामायण की कितनी बातें, फिर भारत से उसका जवाब आपको मिल जाएगा। राम पूछते हैं बिना मेरे पूछे तो कोई काम नहीं करता, कहा मां सीता से पूछा था इसलिए आप ये नहीं कर सकते, और सीता मां बैठे हैं इसलिए आपसे पूछा, हर क्षण राम राम बोल रहे हैं, इसलिए आप ये नहीं कर सकते मैंने आपसे नहीं। जब ब्रह्मास्त्र में आपका स्वरूप देखा और आप कहते हैं कि क्या लंका जलाना भी पूछा था, फल खाने के लिए पूछा था, एक प्रश्न और उसका जवाब, ये रसियन वैज्ञानिक कह रहे हैं महाभारत करो, तो फल खाने के लिए कहा था सीता ने कि लंका जलाने के लिए, ठीक ब्रह्मास्त्र में आपका स्वरूप देखा और आपको देखकर मैं हंसने लगा और आप हंस रहे थे, तो आप ये बताइए आपका अपने ईष्ट का अपने गुरु का सम्मान करना धर्म है कि नहीं। तो ब्रह्मास्त्र में मैंने आपको देखा और आप बताइए आपका ब्रह्मास्त्र में देखा तो आपके नाम से क्या तोड़ सकता कि नहीं, कहा तोड़ सकता, क्यों नहीं तोड़ा, इसलिए नहीं तोड़ा कि आपका अपमान ना हो, और सोचा कि जब आप आ रहे हैं मेरे पास तो मेरे द्वारा कुछ अच्छा ही काम कराएं। अच्छा प्रभु आप ही बताइए, आपने आज्ञा तो नहीं दी लेकिन लंका जब मेरे द्वार जली तो आप दुखी हुए थे, सुखी हुए थे, कुछ नहीं बोले, तो मैंने तो आपका काम किया आपके इशारे पर। अब वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं आ जाइए, ये भीम भी वो कौन पुत्री मानते हैं, अवतारी मानते हैं। जब गदाई जो हो रहा है कहते वहां पर राम के समय में हनुमान जी बर्दाश्त में विष्णु को देखा, राम को देखा, लेकिन उसका जवाब आता है कि जब उसे कराना है तो किस तरह कराता है, गदा युद्ध में वही शक्ति किस के रूप में है, और जब कहा जाता है युधिष्ठिर से याद दिलाओ याद दिलाओ, नहीं तो दुर्योधन जी जितना मुश्किल है, आप महाभारत पर इनकार कर दिया। अच्छा फिर कहा मझेले भैया बोलते थे, कहते मझेले भैया मझेले भैया, भरी सभा में याद करो दुर्योधन क्या बोल रहा था, अगर आप लोग सीरियल देखे होंगे तो उसमें दिखाया गया होगा, मैंने तो पढ़ा है, इशारा किया वहां पर, किसने नहीं बोले इशारा किया, इसलिए मनोवैज्ञानिक मान रहे हैं जब तुम्हारा ईष्ट दिखाई पड़े, जब कुछ करे उस समय अपनी बुद्धि से जो करना है करो, वो उन्हीं काम है, और विकट परिस्थिति में भी वो बोलेगा नहीं लेकिन इशारा करेगा और आपको सफलता दिला देगा, आपकी विजय हो जाए, बोलेगा नहीं, इशारा किया। तो आज पूरा विश्व जो वैज्ञानिक है हमारी संस्कृति को समझ रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा हनुमान की कथा के आधार पर जिसे मानते हो पूरी तरह मानो, विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, पूछ पे आग लगाई जाए कि बांधा जाए, लेकिन सब कुछ होगा, लेकिन जैसे पूर्ण समर्पण हनुमान का है ऐसे पूर्ण समर्पण होगा तो कोई बंधन आपका विनाश नहीं कर सकता, बंधन तकलीफ देगा लेकिन आपका विनाश होने वाला नहीं है। और जो बंधन बनाने वाले हैं राजवृत्तिशा वाले तो थोड़ी देर हंसेंगे, पूंछ में आग लगाने कोशिश करेंगे, आपकी इज्जत में आग लगाएंगे, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मैं अनुभव पे कह रहा हूं, पूंछ नाम है इज्जत, और आपको बड़े प्यार से कहता हूं आप लोग बड़े हैं, कुछ लोग रावण की तरह पूंछ में आग लगाने की बात, आपकी इज्जत में आग लगाने की बात करेंगे, लेकिन मैं खुलेआम कहता हूं जब रावण की लंका जल गई तो आज भी जो आपकी इज्जत पर आग लगवाने कोशिश कर रहा है उसके भी सोने चांदी भस्म हो जाएंगे, थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ा इंतजार करो, बस ये मैं गारंटी के साथ कहता, देखा इसलिए कहता हूं, कोई भी हो चाहे वो महात्मा जी हो चाहे वो कोई आईजी हो चाहे कोई फलाने हो, सबको देखा है। इसलिए एक मैं वैज्ञानिक होने के नाते मैं वर्तमान हूं, आप वर्तमान हैं और वर्तमान को क्या जरूरत है वो बताना मेरा धर्म है। फिर से मैं कहूंगा, मैं सबका आदर करता हूँ, ब्राह्मणों का बहुत करता हूँ, क्योंकि तो संस्कार कहते हैं अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो आपके बच्चे राक्षस बन जाएंगे। इसलिए आप भी, मैं स्वयं ब्राह्मणों का आदर करता हूँ, आप भी ब्राह्मणों का आदर करता हूँ। मैं हर मंदिर मस्जिद का आदर करता हूँ लेकिन मानता अपने को, आदर सबका करता हूँ लेकिन विश्वास में अपने गुरु का, अपनी संस्कृति का, अपने देश का करता हूँ। आदर मैं अमेरिका का करता हूँ लेकिन विश्वास मैं भारत का करता हूँ। इसलिए याद रखिएगा, आदर में विश्वास नहीं है। मैं अमेरिका का आदर करूंगा लेकिन खुले आम बोल, अगर अमेरिका भारत को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो हमारा कृष्ण कहता है ये गुरु का आदर खत्म हो गया, भीष्म पितामह का आदर खत्म हो गया, सपनी मामा का आदर खत्म हो गया। इसलिए मैंने कृष्ण से सीखा है, मैं मामा का आदर करूंगा, मैं गुरु का आदर करूंगा, पितामह का आदर करूंगा। लेकिन ये लोग अगर गलत ढंग से दुर्योधन की मदद करके अगर हमारे धर्म को, संस्कृति को नष्ट करेंगे तो मेरा रिश्ता किसी के साथ नहीं है, कोई आदर नहीं है। इसलिए मेरी बात को फिर समझिए, मैं हर देश का आदर करता हूँ, हर व्यक्ति का आदर करता हूँ, लेकिन जो देश जो व्यक्ति इस भारत को खंडित करना चाहेगा मैं उसका आदर नहीं करूंगा। उसके सामने आपको तैयार करके बांध चलवाऊंगा, सुदर्शन चलवाऊंगा और हाथ में माला नहीं रखवाऊंगा, माला से शक्ति प्राप्त कराऊंगा। हनुमान जी के मंदिर में आकर के हनुमान का दर्शन करा के आज अंदर हनुमान जी की शक्ति पैदा करके, लेकिन जैसे युद्ध में हनुमान जी ने राक्षसों को मारा इसलिए आपने हनुमान जी की शक्ति पैदा करके भारत को नष्ट करने वालों पर कहूंगा कि इनका नाश करो, विनाश करो, लेकिन कानून के हिसाब से, कानून को अपने हाथ में मत लो। इतने अच्छे बनो कि कानून आपका साथ दे। इसलिए मैं आपसे आप भी मेरी तरह सबका आदर करें, सत्कार करें। पूरी वस्त्र हमारी कुटुंब है, हमारा ब्राह्मण कहता अंतरिक्ष की शांति के बाद, पृथ्वी की शांति के बाद, सभी बहुत सुखना, हम सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं। और यही हमारे आज वैज्ञानिक कहते हैं भारत जैसी शक्ति दुनिया में कोई नहीं। और वैज्ञानिक अब कह रहे हैं भारत कहता है तो पूरी भरसा कुटुंब है, भारत की प्रार्थना में है कि पूरा देश शांति प्राप्त करे, भारत में जाति पाति की चक्कर था नहीं, लेकिन बीच में जब अंग्रेजों ने राज किया तो चक्कर डाल के हमें आपको विजन को डिवीजन में करके सत्यानाश कर दिया। आप राम का जीवन ले, सबरी के यहां खाने गए और झूठे बल का है जिसकी पूजा आप करते हो और आज हिंदू हिंदू के घर खाने के लिए तैयार नहीं, और राम की पूजा कर रहे हो। एक ऐसी परिस्थिति आई कि सीता को रावण के यहां से राम लाए और आज के पुरुष उसकी पत्नी बिना पूछे बाप के घर जाए तो मुझे कहते दूसरी शादी करूंगा और राम को मानते हो। एक विचार दे रहा हूं, इसलिए घर में बाहर नारी का सम्मान करो, पुत्रियों का सम्मान करो। और आपको एक बड़ी चीज बता दो, विज्ञान के आधार पर, विज्ञान कहता है लंबे समय तक जिसे दबाते हो कुदरत उसी को फल लाती है। हमने 100 बरस तक आपको दबाया तो आज कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री, बल्कि अभी राष्ट्रपति भी, अगर इस देश को, अगर मैं क्वालिटी की बात नहीं, मैं नारी की बात कर रहा हूँ, ये न समझना स्वामी जी, मैं पॉलिटिकल हुई नहीं, मैं तो टोटल हूँ। मेरा कोई सिस्टर भाजपा में है तो कोई कांग्रेस में है तो कोई लालू प्रसाद में है, कोई पता ही नहीं चलता कितनी पार्टियां हो गई। मैं तो आपको मानता हूँ। अभी कुछ दिन पहले भरूच की बात हुई, मेरा चेला कहता है स्वामी जी मैं फलानी पार्टी में जाता हूँ। मैंने कहा आत्मा भी कर्म से शरीर बदलती है, तेरे जिधर जाना जा लेकिन गुरु को नहीं बदलना, तेरे को जहां जाना होगा, क्योंकि मैंने नहीं पूछा था कि तू किस पार्टी में, मैं तुझे अच्छा पा रहा तो आपसे भी कहूंगा जिस पार्टी में जाना जाओ, नई पार्टी बनाओ, लेकिन मेरा तेरा मेरा रहे तो जहां भी जाएगा थोड़ा रास्ता तो मिलेगा, रहेगा। जिस पार्टी में जाना जाओ, जो पार्टी बनानी हो बनाओ। अभी तो मुझे विश्वास ही नहीं, सुबह लोग किस पार्टी में साथ। मुझसे एक बार पूछा गया, वो हिंदी पूछे पार्टी, स्वामी जी आप किस दल के हो, कांग्रेस दल के कि भाजपा के कि किसके? मैंने कहा मैं तो तुलसी दल का, ये तुलसी सबको चाहिए, मैं सबका हूँ। स्वामी जी आप लघुमती में आते हो कि बहुमती में? मैंने कहा मैं न लघुमती में हूँ न बहुमती, मैं तो सुमती में हूँ। यही मेरे से करें, किसी पार्टी पोलिटिक्स का कर न पड़ो, जो अच्छा हो करो। मेरे से मत पूछो, मुझे पूछो महाराज जी किसको वोट दो। मैंने कहा पहले अपनी पत्नी से पूछो, आप तो सुन के ताजुब करोगे। आधे लोग ऐसे खड़े हैं कि उनकी पत्नी उनको देने के लिए तैयार नहीं हो पब्लिक से वोट मांगने। हाँ जोड़ के कहा, नाम नहीं बता रहा, उनकी पत्नी कहते महाराज जी इस निकम्मे को कहाँ वोट मिल गया। हाँ हाँ नाम नहीं लेते। तो भाई ये देश मेरा है, मैं देश का हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगेगा कोई पार्टी के नाम से जाति के नाम से मेरे से अलग नहीं कर सकता। मैं अगर किसी को मानता हूँ, मैंने अपनी समझ को मेरे नाम के साथ 1000 आठ लगता है, आपके पास एक माइंड है, मेरे पास 1000 आठ है। जब मैंने आपको माना है तो एक माइंड के कहने से मैं किसी अपने रिश्ते को तोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे वो जाति की बात हो चाहे वो पार्टी की बात हो। मैं पार्टी नहीं, मैं जाति नहीं मानता, मैं व्यक्ति, जो मुझे अच्छा लगता है, रिश्ता मैंने बनाया है, इसलिए मेरे रिश्ते को तोड़ने कोई कोशिश नहीं करे, जाति के नाम से कि पार्टी के नाम से। यही मैं आपसे कहता हूँ, मैं भारत का हूँ। मेरे पिताजी कर्नल थे, और बुरा तो मानिएगा, मेरे पिताजी ने मुझे एक बात अच्छी सुनाई है, कहते बेटा ये देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा। एक कहानी सुनाए, वो कहानी मैं अपने पिता के आपके साथ में जाना चाहूंगा, एक हंसी की कहानी और एक बड़ी अच्छी कहानी। पिताजी कहते एक कल्पना है, मेरा एक सहायक, एक कल्पना है सुना देंगे। मेरा एक सहायक मच्छर दानी में आ गया, कल्पना है। तो मैंने पूछा मच्छरदानी में क्यों आया, वो कहता है सर जब इसके अंदर मच्छर नहीं घुस सकता, इस मच्छरदानी ओढ़ कर इसलिए आया कि इसके अंदर मच्छर नहीं घुस सकता तो दुश्मन की गोली कैसे घुसेगी। तो कहते हैं ऐसे भी लोग हैं। और एक जो बड़ी अच्छी बात गौरव वैज्ञानिक जो सुना है देश के, अर्थात रेची वाले को आवरण नहीं चाहिए, उसको ताकत चाहिए, मच्छरदानी उसका क्या रखा करेगी, कमजोर चीज क्या रखा करेगी, खुद ताकत पैदा करो उसका मतलब। एक और कहानी सुना है तो देश पर, इसलिए अक्सर मैं 2-3 बार मंत्रियों में क्लास ऑन ऑफिसर को बोल चुका हूँ और आज भी कहूंगा आपके साथ। एक आदमी शमशान में बैठा है, आदमी की खोपड़ी पर आदमी का मांस पका रहा है, इसको बोलते हैं अघोरी। एक अघोरी बैठा है, आदमी की खोपड़ी में आदमी का मांस पका रहा है, और एक व्यक्ति जा रहा है, उसने ढक दिया आदमी के चमड़े से, ढक दिया, ये मनोभाव मेरे पिताजी के बाद, आदमी के चमड़े से ढक दिया। तो उधर से एक संत आ रहे, कहते अघोरी ये जगह की नहीं है, शमशान है, ये आदमी की खोपड़ी है, कोई बर्तन भी नहीं, और मांस भी आदमी का है। ये आदमी जब जा रहा था मैंने देखा तूने ढक दिया। कहा आपकी बात ठीक है संत जी, ये शमशान है, ये आदमी की खोपड़ी है, आदमी का मांस है, आदमी की हड्डियों से पका रहा हूँ, आदमी के अंदर ढक दिया, ये जो आदमी जा रहा है ये देशद्रोही है, ये अपने माता पिता को नहीं मानता, अपने गुरु को नहीं मानता, अपने वडिलों को नहीं मानता, अपनी संस्कृति को नहीं मानता, इसलिए देश द्रोही है। अगर इसकी नजर पड़ेगी तो ये भोजन इतना खराब हो जाएगा कि एक आकर के मैं भी देश द्रोही हो जाऊंगा, ये देश का भगत नहीं रहूंगा, इसलिए इसकी नजर न पड़े इसलिए ढक दिया। पिताजी यही करते हैं, जो देश का भला नहीं सोचे कहीं भी रहे। हमारी संस्कृति, हमारे माता पिता, हमारी बेटियां, और यही मैं कहता हूं आपसे, मैं कर्नल का लड़का, मेरे मन में माँ का संस्कार ज्यादा मिला। क्यों मिला ज्यादा बताऊं? ये मिलिट्री वाले की पत्नियां जो हमें कहीं कुछ हो गया तो रोज कोई साधु खिलाती रहे, कोई बोला, इसलिए ब्राह्मण साधुओं पर मेरा भरोसा। क्यों तो खिलाती थी? कि मेरा पति मरे थे डर के मारे, मेरी माँ डर के मारे रोज खिलाते, मुझे घर जाओ पकड़ रहा कोई। लेकिन उसमें अच्छे अच्छे साधु मिलते रहे, इसलिए मेरे अंदर जो संस्कार है माँ का ज्यादा है। और एक बात बता दूं, पिताजी मेरी माँ का विरोध नहीं करते थे, लेकिन बताया जब शादी हुई तो मंदिर नहीं मानते। एक दिन मेरी माँ को डांटा, क्या मंदिर में रखा, कुछ बोला तो आप चलिए पुजारी के पास मंदिर में, पुजारी से पूछिए मैं क्या मानते हुआ। पुजारी का जब ये कहती, हे प्रभु जो दुख आए मुझे आ जाए, मेरे पति को नहीं आए। ये बात सुनकर मेरे पिता का आंखों में आंसू आए कि मेरे लिए आती है तो कहा, चल मैं तुझे मंदिर छोड़ने आऊंगा, लेकिन मंदिर के अंदर तू जाना, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। पिताजी बहुत अच्छे परमात्मा विवेकानंद को मानते थे, लेकिन ये पूजा पाठ में कर्म कांड उनका विश्वास नहीं। लेकिन मेरे अंदर कर्म कांड का जो विश्वास क्यों आया? क्योंकि विज्ञान कहता है मन को अच्छी बात में लगाने के लिए पूजा पद्धति जरूरत है, बहुत ही जरूरी। इसलिए मैं वैज्ञानिक ढंग से मानता हूँ। एक दिन की बात है, मेरी माँ कहती है कि आज मैं 3 घंटे मंदिर में रहूंगी, पुजारी से चाबी ले लूँ, तेरे पिता को अंदर आना चाहिए, भगवान दर्शन करें। आप साधु करें, धूप में पिताजी दीप में 3 घंटे बैठे रहे, लेकिन अंदर नहीं गए। फिर मैं आया, मैंने कहा उसको कल आना हो कल आए, लेकिन लेके जाऊंगा, लेकिन मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, और मैं जानता हूँ बहुत अच्छा। लेकिन वो कुछ समय ऐसी घटनाएं मंदिरों के घट गई थी, दयानंद सरस्वती का थोड़ा अध्ययन किया था, इसलिए वो भगवान मानते थे, लेकिन मैं तो मना दिया कि नहीं, एक कर्मकांड बहुत जरूरी है, और जब मैं साधु बना तब मानने लगा, नहीं पहले नहीं, रोज मंदिर जाता। अब आपसे भी कहता सही बात, ये मनीषानंद की खोपड़ी तोड़ो तो इसमें भगवान तो मिलेंगे, ब्राह्मण भी मिलेंगे, हमारी बेटियां मिलेगी, इज्जत मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही साथ देश प्रेम भी मिलेगा, देश प्रेम भी मिलेगा। इसलिए ये देश प्रेम की बात या देख लीजिए। अगर मैं मनोविज्ञान पे लाऊं, नारी क्या है? संस्कृति। हरण लेके कौन गया? राक्षस। अब आज हमारी संस्कृति का, हमारे रीति रिवाज का, किसी भी माध्यम से जो हरण हो रहा है उसे वापस आप लाएंगे जब हनुमान की शक्ति आएगी। सीता को वापस लाने में हनुमान जी ने मदद किया। सीता नाम है संस्कृति। तो मैं पूरे भारत को सामने रख के कहता हूँ, आप अंदर उत्साह आइए, पूर्ण समर्पण चाहिए, सबका आदर करो, और जिसे मानते हो मानो, रिश्ता करो, लेकिन जो गलत है वो गलत है, कोई भी हो जाए। और आज इस हनुमान जयंती पर ये 11वें रुद्र हैं, इसलिए याद रखिएगा, शंकर ने 11वें रुद्र को राम की सेवा में भेजा, राम विष्णु के रूप है। आज मनोविज्ञान भी कहता है कभी किसी देवता का खंडन न करो, शंकर की पूजा करो करो, हनुमान की करो करो, राम की करो, लेकिन किसी और का खंडन न करो। तो आज इस हनुमान जयंती पर आप लोगों ने मिलकर के जो अच्छा प्रोग्राम रखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आप सबने स्वागत किया, सुरेश जी की बड़ी इच्छा थी, धनसुख भाई की थी, सबकी, लक्ष्मण भाई की थी, हमारे जो सब आए, मैं अपने ही परिवार में बैठा हूँ। ये अक्सर यहाँ के पुजारी भी अच्छे हैं, और मैं जब आया था तभी मैंने अनुभव किया, अगर आपकी अपने अंदर आस्था है तो हर भगवान आपके साथ है। इसलिए सबका आदर करते हुए, सब में परमात्मा देखते हुए, शिव शक्ति का स्वरूप मानते हुए, हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, एक एक पुत्र पुत्री के रूप में उत्साह, सतत प्रयास, कठिन से कठिन समय आने पर मन को कमजोर नहीं करना और सदा अपने गुरु मंत्र को, अपने इष्ट को याद करते हुए काम करते रहो करते रहो। तो जैसे सीता लक्ष्य मिला, संस्कृति मिली, ऐसे आप सब हम सब मिल करके फिर से कह दो, आप किसी पार्टी में बात नहीं करूंगा, आप किसी जाति के बात नहीं करूंगा, लेकिन हम सब भारतवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। तो मैं भारत के नागरिकों से कहता हूँ, हर नागरिक उत्साही बने, बलवान बने, पवित्र बने, शुद्ध बने और कठिन से कठिन परिस्थिति में वो आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। आप बढ़ेंगे, परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा। आपका निर्माण, परिवार का निर्माण, परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण, और समाज का निर्माण ये देश का निर्माण है। तो आज इस हनुमान जयंती पर एक एक व्यक्ति को, एक एक पुत्री कहता हूँ, अपना निर्माण करो, कठिन से कठिन समय पर भी चलने की बात करो, अपने गुरु का नाम याद, अपने गुरु का स्मरण करते रहो, मंत्र का स्मरण करते रहो। कठिन से कठिन समय आएगा, लेकिन गुरु मंत्र और आपका काम, आपकी सेवा ये सफलता तक पहुंचाएंगे। तो स्मरण और सेवा से जैसे हनुमान जी की शक्ति प्राप्त किए, आप भी स्मरण और सेवा से शक्ति प्राप्त करके इस देश को ऊंचा उठाएं। और देश तभी ऊंचा उठेगा कि आपका ये सद्विचार आने वाले समय में इस धरती पर अच्छे लोगों को लाए, अच्छे लोगों को आए। इसलिए नारी अपने अच्छे विचार श्रवण मनन से इस धरती पर अच्छे लोग, और नारी अगर विकृत हो गई तो राक्षस पैदा होंगे। तो आज इस हनुमान जयंती पर जो विचार दिया है उस विचार को अपनाएं। जितने लोग व्यवस्था में सहयोगी बने, मंदिर के प्रति, सृष्टियों के प्रति, सुरेश और धनसुख भाई के प्रति, लक्ष्मण जी के प्रति, जो भी है सौरभ के प्रति, सभी जो मेरे साथ है, सबको और सब में परमात्मा देखते हुए शिव शक्ति का रूप मानते हुए आज इस मंच से मैं आपको वंदन करते हुए मेरे विचारों को स्वीकार करें, स्वीकार करें, शिव शक्ति प्राप्त करके परिवार समाज और देश का कल्याण में लग जाए, स्मरण और सेवा में लग करके जीवन की सफलता, समाज और देश की सफलता को प्राप्त करें। यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप सबको वंदन। हरि ओम तत्सत।
महेंद्र भाई।